किसान भाइयों, आगामी 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसका एक पूर्वानुमान है, वो हम आपको बताते हैं। ये प्रभावी रहेगा 10 मई से 14 मई तक। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 120 घंटों के दौरान 10 मई से लेकर 14 मई तक घने बादल रहने और 10 मई से लेकर 11 मई को बिजली गिरने, तेज़ हवा चलने, ओलावृष्टि और आंधी के साथ हल्की बारिश और 12 मई से लेकर 14 मई के बीच बिजली गिरने, तेज़ हवा और आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 64 से 89% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 31 से 39% रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशाओं में बहने और 36 से 47 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आने वाले 5 दिनों में मौसम को देखते हुए फसल के अनुसार किसान भाई को सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। आगामी सप्ताह में हल्के से मध्यम बादल रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें और कीट रोग से बचाव के उपाय करें। किसान भाई जिनके पास आने वाले दिनों में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, खेत खाली होने पर ग्रीष्मकालीन मक्का, हरे भुट्टे के लिए बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की वे बुआई कर सकते हैं। गहरी जुताई की बात जहां तक है तो उसमें खरीफ फसल की बुआई से पहले खेत की एक बार गहरी जुताई अवश्य करें, जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है और घास और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। इससे कीड़े, उनके अंडे और बीमारियों के जीवाणु ऊपर आकर तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। गहरी जुताई मानसून आने से 45 दिन पहले करें, जिससे धूप में बहुवर्षीय घास और खरपतवार सूख जाए और मिट्टी में वायु का प्रवाह आसानी से हो सके। इसलिए किसान भाई मई के महीने में खेत की गहरी जुताई ज़रूर करें। किसान भाइयों, जिस खेत में आपको मिट्टी परीक्षण का नमूना लेना हो, उसमें जिगजैग प्रकार से घूमकर 10-15 स्थानों पर आप निशान बनाएं, जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें। चुने गए स्थानों पर ऊपरी सतह से घास फूस कूड़ा करकट हटा दीजिए। इन सभी स्थानों पर 15 सेंटीमीटर करीब 6 से 9 इंच गहरे वी आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह को निकाल लें और साफ बाल्टी या ट्रे में डाल लें। इकट्ठी की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें और साफ कपड़े पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगुली से ढेर को 4 बराबर भागों की मिट्टी अलग हटा दें। अब शेष 2 भागों की मिट्टी पुनः अच्छी तरह से मिला लें और गोल बनाएं। ये प्रक्रिया तब तक आप दोहराएं जब तक लगभग 0.5 किलो मिट्टी शेष रह जाए। यही प्रतिनिधि नमूना होगा जिसे आपको मिट्टी परीक्षण के लिए देना होगा। सूखे मिट्टी नमूने को साफ प्लास्टिक थैली में रखें और इसे एक कपड़े की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारियां लिखी हो, प्लास्टिक की थैली में अंदर और एक कपड़े की थैली के बाहर बांध दीजिए। अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण हेतु आप प्रयोगशाला भेज सकते हैं। मूंग और उड़द पर कुछ सलाह है। पुष्पन की अवस्था, फली बनने की अवस्था है, तो इस समय कीट प्रकोप जो होता है वो फली खाने वाली इल्लियों का प्रकोप का समय होता है। तो वर्तमान समय में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल में पुष्पन फली बनने की अवस्था जिस चल रही है, तो इस स्थिति में नमी बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यकतानुसार फसल में 3 से 5 दिनों के अंतराल में आवश्यकतानुसार आप सिंचाई करते रहें। मूंग की फसल में फली खाने वाली इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 4 से 4.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियाँ और फेरामोन ट्रैप 8 टैप प्रति एकड़ की दर से आप लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2-3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे फली खाने वाली इल्लियों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरेट्रा नीलीप्रोएल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब गन्ने की बात करें तो गन्ने की फसल में निंदाई गुड़ाई करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने तक आ गई है उन खेतों में निंदाई गुड़ाई करने के बाद नत्रजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कद्दू भृंग और फल मक्खी के हमले की संभावना है, इसलिए किसानों को डाइमेथोएट 30 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मिथाइल डेमेटॉन 25 EC 500 मिलीलीटर हेक्टेयर का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। जिन किसानों के पास सब्जियों और रोपण फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की सुविधा है उन्हें जड़ क्षेत्र के आसपास उचित नमी बनाए रखने के लिए जल निर्वहन दर को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें किसान भाइयों, नहीं तो मिट्टी में कम नमी होने के कारण परागण प्रभावित हो सकता है और परागण प्रभावित होगा तो फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी। खीरा, तरबूज, खरबूज और ककड़ी फसलों में सिंचाई व्यवस्था ठीक से करें और तापमान कीट फैलने के लिए अनुकूल है उसको ध्यान में रखते हुए लौकी, करेला, बरबटी, भिंडी और बैंगन जैसी फसलों में रोज़ कीटों की निगरानी करें। किसान भाइयों, आम की फसल में फल झड़न से रोकने के लिए 5 मिलीलीटर पंप की दर से प्लानोफिक्स नामक दवा का आप छिड़काव करें। आम, नींबू वर्गीय फसलों और अन्य फसलों में सिंचाई का प्रबंधन करने की आवश्यकता है और नए बाग की स्थापना के लिए सही आकार और तय दूरी के गड्ढे खोदें और सोलराइजेशन के लिए मिट्टी को खुला छोड़ दें ताकि धूप लगे उन्हें। बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जानवर को छायादार बाड़े में रखें और नियमित रूप से शुद्ध और ठंडा पानी जानवरों को दिन में 3 बार दीजिए। पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु के अनुसार हरा चारा और खनिज मिश्रण प्रदान करें। दूध उत्पादन करने वाले जानवरों को घर पर ही रखें और हरी घास खिलाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा भी आप पिलाएं, ये भी आपको सलाह दी जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा और भारत मौसम विज्ञान विभाग से ये जानकारी किसानों के लिए नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।